بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بس ہماری آج سے فصل سوم میں ہے کہ جو اس بات وجود خدا کے عنوان سے، یعنی اس فصل میں ہم نے براہین اس بات وجود خدا کے بارے میں بات کرنی ہے. مصنف سب سے پہلے چند نکات کا تذکر دیتے ہیں، اس کے بعد اصل بات میں وارد ہوتے ہیں. پر ضروری ہے ہم بھی ان بعض نکات کو جو انہوں نے عرض کیے ہیں تھوڑی بہت توضیح دے دیں تاکہ مطلب واضح ہو، مطالعے میں دقت پیش نہ آئے. سب سے پہلے نقطہ تو جو انہوں نے یہاں بیان کیا ہے وہ یہ کہ آپ جب بھی کسی سے گفتگو، بحث، مناظرہ کرنا چاہتے ہیں خدا شناسی کے بارے میں، سب سے پہلے آ کر دونوں مل کے اتفاق کریں کہ خدا سے مراد کیا ہے، آپ خدا کا معنی کیا ہے، اس کے اوپر متفق ہوں. کیونکہ اگر خدا کے معنی پر یہ متفق نہ ہوئے تو پھر مناظرہ یا بحث ان چیزوں کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. دوسرا نقطہ جو یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ بعض دانشمند غربی ہوں یا شرقی، یعنی مسلمان مفکر یا غربی مفکر، بعض ان میں سے قائل ہیں کہ خداوند متعال کا اس بات بدیہی ہے، وجود خدا کا اس بات بدیہی ہے. منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا اور ذہن میں ہوگا آپ کے، بدیہی ہمارے پاس دو قسم کے مفہوم ہے، ایک بعض مطلب مطالب نظری ہوتے ہیں، بعض مطالب جو ہیں وہ بدیہی ہوتے ہیں. نظری استدلال کے محتاج ہیں، جب تک آپ برہان اقامہ نہیں کریں گے، دلیل لے کر نہیں آئیں گے، اس کو تصدیق آپ نہیں کر سکتے. لیکن بدیہی ان مطالب کو کہا جاتا ہے کہ جن کی تصدیق کرنے میں آپ استدلال کے محتاج نہیں ہیں. خداوند متعال کے وجود کے اس بات میں بعض مفکرین کا نظریہ یہ ہے کہ اس خدا کے اس کے وجود کا اس بات بدیہی ہے. اصلاً خدا کے وجود کہ اس بات کے لیے برہان اقامہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمارے تشیع کے اندر علامہ طباطبائی بارز شخصیت ہیں اس نظریے کی، کیونکہ انہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں، خصوصاً المیزان کے اندر اور باقی اپنی کتب کے اندر، جیسے اسفار کے اوپر جو تعلیقہ ہے ان کے، اس کے اوپر بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ خداوند متعال کا وجود بدیہی ہے، اس بات کا محتاج نہیں ہے، اس کے اوپر برہان و دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور علامہ کا یہ ادعا ہے، دعویٰ ہے کہ آپ اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک تتبع کر کے دیکھ لیں، ایک آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس کے اندر خدا نے اپنے وجود پر دلیل اقامہ کی ہو. ایک آیت نہیں ملے گی آپ کو کہ جس پر خدا نے اپنے وجود کو اس بات کرنے کے لیے برہان اقامہ کیا ہو، تاکہ اس آیت کے ذریعے یہ خود وجود اس بات خدا ہو جائے اس کے اندر. یہ علامہ کا ادعا ہے. علامہ کہتے ہیں کہ خدا نے جو آیات کے اندر مطالب بیان کیے ہیں وہ توحیدی مطالب ہیں، یعنی مشرکین کو توحید کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، اور وجود خدا چونکہ بدیہی تھا تو इसके इस बात पर कोई आयत नाजिल नहीं की, ये अल्लामा का इद्दा है। बस फिर ये जो हम इल्म कलाम के अंदर बहसें पढ़ते हैं, और बराहीन बुरहान नज्म व इमकान वजूब, मसलन ये हम इस किताब के अंदर भी फसल सिवम जो शुरू किया है इसके अंदर जो बराहीन पढ़ेंगे, तो फिर ये क्या होंगे, इसको हम क्या करें फिर? उसका अल्लामा जवाब देते हैं कि ये हकीकतन बराहीन नहीं है, तनबीहात हैं। क्योंकि आप जब किसी बदीही चीज की किसी किसी बदीही चीज का किसी को तज़क्कुर देंगे तो वो तंबीह कहलाता है ना बुरहान। मसलन इस वक्त मसलन इस कमरे के बारे में कोई किसी ना किसी उज्व के बारे में पूछ लिया जाए कि मसलन आपसे पूछा जाए कि मसलन इस कमरे के कितने दरवाजे हैं, मुमकिन है आप किसी वजह से उसको ना देख सकते हो और आप ना बता सकें, लेकिन जब आपको तज़क्कुर दिया जाएगा और किसी तरीके से मुतवज्जे जब आपको किया जाएगा तो आप फौरन कह देंगे कि इस कमरे का मसलन एक दरवाजा है। अब ये जो मैंने आपको मुतवज्जे करने के लिए रास्ता इख्तियार किया, ये रास्ता बुरहान नहीं कहलाएगा बल्कि इसको तंबीह कहते हैं। तंबीह क्योंकि बदीही चीज है, यानी वाजे है, आप अपनी आंखों से देखोगे समझ में आ जाएगी, इस्तेलाल की जरूरत नहीं है कि मसलन बताया जाए कि इस कमरे के कितने दरवाजे हैं मसलन। लिहाजा अगर किसी गफलत की वजह से आपको नहीं पता चला था, उस गफलत को बरतरफ करने का जो रास्ता है उसको बुरहान नहीं कहेंगे, तंबीह कहेंगे। अल्लामा ये कहते हैं कि खुदावंद मुताल का वजूद बदी ही है, बुरहान की जरूरत नहीं है उसको, फकत यह कि इंसान की फितरत को साफ किया जाए। जैसे ही ये फितरत साफ हो गई, खुद ब खुद क्या है, इंसान खुदा की तस्दीक कर देगा। और ये तंबीहात जितनी भी है फितरत को साफ करने के लिए हैं। फितरत गर्द आलूद हो चुकी है मादी परस्ती के अंदर, मादी दुनिया के अंदर, लिहाजा खुदा से गाफिल हो जाता है, खुदा के वजूद का इनकार कर बैठता है। लेकिन जब इन तंबीहात के जरिए उसकी फितरत को पाक किया जाता है, फितरत को धो दिया जाता है और साफ शफाफ कर दिया जाता है, तो ये खुद ब खुद क्या है, खुदा के वजूद का कायल हो जाता है और तस्दीक कर देता है उसको। एक मतलब जो इन्होंने यहां पर बयान किया वो ये था, और इसी तरह कहते हैं अंदेशमंदाने गर्बी जो है वो भी खुदा के वजूद को बेनियाज आज इस बात समझते हैं। एक मतलब यहाँ पे जो जिक्र किया इन्होंने वो ये कि एक मसीही दानिशमान मसीही आलिम वो कहता है खुदा का वजूद इस्तिदलाल का तो मोहताज नहीं है लेकिन बदीही भी नहीं है। इसका क्या राज है, इसको फिर बाद में इंशाल्लाह खोलेंगे, इसको अभी यहीं रहने दें। असल मतलब जो है वो आपको अर्ज कर दिया है कि बाज कायल हैं कि बराहीन इस बात वजूद खुदा के लिए जरूरी नहीं है। और तकरीबन आजकल के हमारे बुजुर्गान भी इसी के कायल हैं। अगर कोई मिसल आयतुल्ला मिसबाह अगर कायल हैं कि इस बात कुरान के अंदर इस बात मौजूद है, तो वो भी ये नहीं कहते कि आयत इस बात कर रही है, यानी मकसूद अव्वली आयत का इस बात खुदा है ना, वो भी ये कहते हैं कि मकसूद अव्वली मतलब कुछ और बयान हो रहा है, लेकिन इसके ज़िम्न में इस बात खुदा भी मौजूद है। मसलन एक मारूफ तरीन आयत जो इस फसल के शुरू में भी इन्होंने लिखी है, खुदा खुद फितरी होने की तरफ इशारा कर रहा है, अफिल्लाह शक्कुन फातिर समावात वल अर्ज, सवालिया अंदाज, आया खुदा के अंदर शक है, शक करते हो तो, जो कि खालिक समावात व अर्ज है। अब लिताफत देखें आयत के अंदर, ये नहीं कहा अफिल्लाह शक्कुन खालिक समावात वल अर्ज, बल्कि क्या कहा है अफिल्लाह शक्कुन फातिर समावात वल अर्ज, यानी आयत का लहन बता रहा है कि खुदा के वजूद का इस बात जरूरी नहीं है, बदी है, अपनी फितरत की तरफ रुजू करो समझ जाओगे। कि खुदा है। पर एक मतलब ये, तीसरा मतलब जो यहां अर्ज करते हैं मुकदमे के उन्वान से, वो ये है कि खुदावंद ने मुताल के बारे में एक मर्तबा मतून के अंदर कुरानी व रिवाई बहस होती है और वो औसाफ़े खुदा बयान करते हैं। जैसा कुरान के अंदर मुताला किया जाए तो अक्सर आयात में खुदा के औसाफ बयान हो रहे हैं। और एक मर्तबा क्या है, ये खुदा का मसला मतर, खुदा शनासी जो है वो मतरा होती है इल्म फलसफा के अंदर, और ये भी औसाफ बयान करता है खुदा के लिए। मसलन कुरान के अंदर जाए तो मुख्तलिफ औसाफ हैं, खुदा को गैर मखलूक कहा कहता है, खुदा को मसलन क्या है अलीम गदीर, मसलन इस किस्म के औसाफ मौजूद हैं। लेकिन जब आप फलसफे की तरफ जाते हैं तो यहां पर आपको बाज अनावीन और मिलते हैं। मसलन फलसफा खुदा को वाजिबुल वजूद कहता है, फलसफा खुदा को गैर मालूल मानता है, इस किस्म के औसाफ जिक्र होते हैं। तो अब यहां पर बात यह है कि जो खुदा फलसफे के अंदर जिक्र है, आया वही खुदा दीन खुदा है, यानी जो खुदा दीन मतरा, दीन जिस खुदा को मतरा कर रहा है, जिक्र कर रहा है और साबित कर रहा है और औसाफ उसके बयान कर रहा है, आया ये वही खुदा है कि जिसको फलसफा और बयान कर रहा है, या फलसफा जिसको बयान कर रहा है, दीन उसी को बयान कर रहा है, या नहीं इनके अंदर तफावुत है, फलसफा कुछ और औसाफ बयान करता है और दीन कुछ और औसाफ बयान करता है। ये एक बात मौजूद है कि जो दानिशमंदान व आलिमाने शर्की व गर्बी के अंदर जिक्र है। हमारा इद्दआ ये है कि फलसफे के अंदर जिस खुदा के बारे में बात होती है और उसके औसाफ बयान किए जाते हैं, ये वही खुदा है जिसके बारे में दीन बात करता है, जिसके बारे में हमारे मतून रिवाई व कुरानी बात करते हैं। कैसे इसको हम साबित करेंगे? इसको साबित करने के लिए हमारे पास एक यही तरीका है कि हम आकर देखें कि फलसफा जब खुदा को वाजिबुल वजूद कहता है तो इससे क्या मुराद है। तो इससे मतलब वाजे हो जाएगा, वाजिबुल वजूद के जो फलसफा ये वस्फ जिक्र करता है, वो उसका मतलब यह है कि खुदावंदे मुताल किसी भी चीज का मोहताज नहीं है, सब कुछ उसका अपना है। यानी दूसरे लफ्जों में कि खुदा किसी का मालूल नहीं है, ये वजूबे जात का मतलब है। और गैर मालूल का दूसरा नाम क्या है दीन के अंदर? गैर मखलूक है। मालूल फलसफे में कहा जाता है, और अगर मुथुने रिवाई के अंदर या मुथुने दीनिया के अंदर आ जाए तो उसमें मखलूक कहा जाता है, मखलूक यानी मालूल। वाजिबुल वजूद यानी गैर मालूल, यानी किसी का मालूल नहीं है, अपनी इल्लत नहीं रखता, खुद है सबकी इल्लत, गैर मालूल है, और मुतूने दीनिया के अंदर गैर मालूल को क्या कहते हैं? गैर मखलूक कहते हैं। बस खुदा का एक वस्फ जो दीन के अंदर जिक्र है वो गैर मखलूक होना है, और फलसफा वाजिबुल वजूद के जरिए बयान कर रहा है कि खुदा गैर मखलूक है। मालूम हुआ कि जिस खुदा के बारे में फलसफा बात कर रहा है, नकल भी उसी के चीज के बारे में बात कर रहा है, दीन भी उसी के बारे में बात कर रहा है। ये एक मतलब था कि जो इन्होंने यहां पर तज़क्कुर दिया, और खुलासतन आपकी खिदमत में आकर एक मुफसल बात है कि खुदाए दीन खुदाए फलसफा ये एक हैं या मुख्तलिफ हैं। ये एक तोलानी बात है, लेकिन यहाँ पे चूंकि उन्होंने मुख्तसर इशारा किया है और मैंने भी मुख्तसर इशारा ही काफी समझा है इसके अंदर। और जो एक तज़क्कुर जो दूसरा ये देते हैं कि जो कहते हैं कि ना खुदा ए दीन और खुदा ए फलसफा के दरमियान इख्तलाफ है, वो भी यूं नहीं कहते कि कामिलन 100% जुदा है, यानी उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका उसके साथ ताल्लुक नहीं है ना, बल्कि वो कहते हैं कि जो फलसफा खुदा के बारे में, जो खुदा जिस खुदा के बारे में फलसफा बात करता है वो कम रंग है, वो इतना वाजे नहीं है, क्योंकि जो औसाफ जिक्र किए जाते हैं उससे इतना वाजे नहीं होता, लेकिन जिन औसाफ के जरिए खुदा को दीन मतरा करता है वो पुररंग है, मतलब वाजे समझ में आता है सारा कुछ। ये तकरीबन मतलब था कि जो इन्होंने यहाँ पर जिक्र किया।
इसका क्या जवाब हुआ जो नुक्ता इन्होंने बयान किया शुरू में कि दीन है, खुदा से क्या मुराद है, खुदा की क्या
वो
ताल्लुक
जो जिससे
तुम्हारे
आप
से?
बात करेंगे आप उसको पहले पूछेंगे उससे, यानी आप किसी भी मसीही के पास बैठ के जो मुनकरे खुदा, मतलब मसीही से ही रोशन फिर बाहर निकले, किसी मुलहिद से आप बैठेंगे जाकर, तो क्योंकि हर बंदे ने खुदा की एक अलग तारीफ बनाई हुई है, ठीक है, आप सबसे पहले उसे पूछेंगे कि खुदा तुम्हारे बारे में, यानी तुम्हारा खुदा के बारे में क्या नजरिया है, यानी खुदा के बारे में क्या तारीफ है तुम्हारी, क्या हकीकत जहन में अपने रखी हुई है तुमने खुदा के बारे में। तारीफ जब मुशख्खस हो जाएगी फिर उसके इस बात की बात है। अब मुमकिन है आप खुदा के ऊपर बात करना शुरू कर दें, वो जिस खुदा का मुनकर हो उसके आप भी मुनकर हो, क्योंकि जो वो खुदा को मान रहे हो आप उसको खुदा नहीं मानते हैं, तो वो बात का फायदा नहीं होगा। पहले आगे मुशख्खस हो कि खुदा से क्या मुराद है, फिर उसके बाद अगर उसके ऊपर इस्तेदलाल और ये काम करें उसमें, तो वो आपके मुखातब के साथ सरोकार रखता है कि आप मुखातब में हैं। इसके बाद ये जब मुकदमे खत्म हुए तो मुसन्निफ वारिद होते हैं बराहीन को बयान करने के अंदर, और सबसे पहले क्या करते हैं, बराहीन की दस्ताबंदी करते हैं, कि बराहीन हमारे पास यानी चंद अनावीन के अंदर खुलासा हो जाते हैं। नहीं ठीक, मैं बाया हूं। एक ताबीरा, एक दस्ताबंदी जो मुसन्निफ ने की है पहले मैं वो अर्ज कर देता हूं, उसके बाद फिर जो एक मारूफ दस्ताबंदी है उसको जिक्र करता हूं। मुसन्निफ यहां पर कहते हैं कि हम बराहीन, इस बराहीन इस बात खुदा को तीन किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म क्या है, मफहूम महवर, यानी बाज बराहीन ऐसे हैं कि जो मफहूम ही से खारिज में चले जाते हैं, यानी मफहूम को तहलील इस तरीके से करते हैं कि उसका नतीजा ये निकलता है कि ये वाकईयत के जिसका ये मफहूम है ये खारिज में भी है। पहला पुराना पढ़ेंगे इसके बारे में तो मतलब और क्लियर हो जाएगा यहां पर, यानी हम यहां पर आके ये बात नहीं करते कि मसलन फुलां चीज है तो अब इसका बनाने वाला कौन है, इसका कौन है फुलाना, मफहूम फकत जहन के अंदर बैठे हैं, कायनात और खारिज से हमारा कोई सरोकार नहीं है, मफहूम हमारे जहन, हम इस मफहूम की तहलील इस तरीके से करते हैं कि उसका नतीजा ये निकलता है कि पस इसको खारिज में मौजूद होना चाहिए। एक पस ये चंद बराहीन बनते हैं मफहूम महवर। और दूसरी जो यहां पर दस्ताबंदी के अंदर किस्म बयान की है, यहां पर वो आकर ये बयान करते हैं कि बास बराहीन ऐसे हैं कि जो मिसदाके नामुअय्यन से शुरू होते हैं, मिसदाके नामुअय्यन से शुरू होते हैं, बास ऐसे बराहीन हैं कि जो मिसदाके नामुअय्यन से शुरू होते हैं, यानी महवर असली वो किसको करार देते हैं, अपना मिसदाके नामुअय्यन को। क्या मतलब मिसदाके नामुअय्यन, हम पढ़ेंगे इसको मुफस्सल जाकर। मसलन आप आकर कहते हैं कि हम उन गिरोह में से नहीं हैं कि जो वाकईयत के मुनकर हैं, क्योंकि फलसफे में भी आपको एक दफा तज़क्कुर दिया था इस बात की तरफ कि एक ऐसा गिरोह गुजरा है तारीख के अंदर जो ये कहता था कि वाकईयत नाम की कोई चीज नहीं है। जो कुछ भी यह ख्याल है हमारा सुफिस्ताई, वो ये कहते थे कि वाकईयत असलन है ही नहीं है, जो कुछ है सब ख्याल वहम है। ये वाले बराहीन के जो इस बात खुदा के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उन के मुकाबले में आकर कहते हैं कि ना तुम वाकईयत के मुनकिर हो, हम उनमें से नहीं है, बल्कि हम वाकईयत के कायल हैं कि वाकईयत है। अब ये वाकईयत वाजिब है या मुमकिन, हादिस है या कदीम, खुदा है या मखलूक, इससे हमारा भी सरोकार नहीं है। हम आपको यहां से शुरू करते हैं, सूफिस्ताइयों को रद्द करने के बाद जो चीज साबित होती है वो ये चीज साबित होती है कि वो खारिज में वाकईयत है। बस जब सब मान जाएंगे कि खारिज में वाकईयत है, तो अब यहां से हम उनको आगे लेकर जाएंगे कि वाकईयत अगर है तो फिर इसकी बाकी मराहिल कैसे तय होंगे, या हम बराहीन में जाकर पढ़ेंगे। बस ये ये मिसदाक नामुअय्यन है। क्यों नामुअय्यन है? क्योंकि मुशख्खस नहीं किया अभी हमने कि ये वाजिब है या मुमकिन, ये जो वाकईयत है सूफिस्ताइयों के मुकाबले में जो वाकईयत हमने साबित की है, हादिस है या कदीम, खालिक है मखलूक, क्या है, इसको हमने मुमय्यन नहीं किया। हमने कहा ए बस तुम सूफिस्ताई जब रद्द हो गए तो इतना तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि इस कायनात, ये कायनात एक वाकईयत रखती है, या ये इस खारिज में एक वाकईयत नाम की चीज है। जब वाकईयत मान ली, फिर उसके बाद अगले मराहिल तय होंगे। बस सनी फरमाते हैं दूसरा रास्ता क्या है, मिसदाके ना मुअय्यन से अपने बुरहान को शुरू करता है। और इसमें फिर क्या, कौन सा बुरहान आप ले लें, मसलन बयान होगा उसके अंदर, मसलन आप इम्कान वजूब, बुरहान इम्कान वजूब वो इसी मिसदाके ना मुअय्यन से शुरू करता है, या मेरे ख्याल में बुरहान वजूब नहीं है, हाँ बुरहान इम्कान वजूब भी हो सकता है इसमें। तीसरा क्या है, मिसदाके मुअय्यन से शुरू करता है, यानी वाकईयत को मानने के बाद वाकईयत को मुशख्खस भी कर देता है। मसलन वो कहता है कि तुम सूफिस्ताई तो नहीं हो, वाकईयत को मानते हो। जब वाकईयत को मानते हो तुम वाकईयत हद्दकल, तुम तो वाकईयत रखते हो ना, रखता हूं, तुम वाजिब तो नहीं हो, वाजिब नहीं है, बस क्या हो, मुमकिन हो, बस मुमकिन हो, फिर तहलील करके आके उसको वाजिब तक पहुंचा देता है। बस आपने क्या किया, आपने बुरहान को एक वाकईयत मुशख्खस करने के बाद शुरू किया। मतलब बुरहानो हुदूस जो है, जो इल्मे कलाम के अंदर मतरा होता है, वो क्या है, मिसदाके मुअय्यन से शुरू करता है। वो कहता है ये आलम हम देख रहे हैं, और ये आलम क्या है, हादिस है, आलम बस वाकईयत है, इस वाकईयत को मुअय्यन कर दिया कि ये हादिस है, फिर हादिस से हम क्या करते हैं, कदीम तक पहुंच जाते हैं। बस हमारे पास बास बराहीन ऐसे हैं कि जो मिसदाके मुअय्यन से शुरू होते हैं। ये एक तकसीम बंदी है कि जो मुसन्निफ ने यहां पर बयान की है। इसके अलावा, यानी ये तो किताब के साथ मरबूत है, इसके अलावा जो तकसीम बंदी जिक्र होती है वो यूं आकर तकसीम करते हैं मुहिम तरीन, कहते हैं कि बाद बराहीन मफहूम महवर हैं, यानी इसको क्या कहते हैं, बराहीने वजूदी।
किसके नजदीक है?
ये बा अब इनके अलावा जो बाकियों ने किताबें लिखी हैं बराही ने इस बात खुदा के अंदर, वो आकर इस किस्म की तकसीम करते हैं। मसलन अक्सर किताबों में आप ये वाले नाम देखेंगे कि बाज बराहीन क्या है, वजूदी हैं, यानी मफहूम महवर हैं। बाज बराहीन क्या हैं, बाज बराहीन क्या है, मखलूक महवर हैं। मखलूक महवर हैं यानी मखलूक से अपने बुरहान को शुरू करते हैं। और बाज बराहीन क्या है, मौजूद महवर हैं। یہ موجود مخلوق ہے یا خالق اس سے سروکار نہیں ہے، وہی مصداق نامعین والی بات آ جاتی ہے، موجود محور ہیں. ایک یہ مثلا بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ بعض براہین کے وجود شناختی ہیں، مثلا اسی برہان وجودی کو آ جاتے ہیں، مثلا کہتے ہیں بعض براہین کیا ہیں، وجود شناختی ہیں، بعض براہین کیا ہیں، غایت شناختی ہیں. جیسے برہان نظم ہے، غایت سے سروکار رکھتا ہے وہ. اور بعض کیا ہے، مثلا اگر کہتے ہیں وجود غایت شناختی ہیں اور وجود شناختی اور غایت شناختی آ جاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور عنوان تھا ذہن سے نکل گیا. براہین اخلاقی وغیرہ ہے وہ بعد میں، تیسرا عنوان ذرا ذہن سے نکل گیا، بعد میں عرض کرتا ہوں پھر آپ کو. یعنی یہ دستہ بندی آپ مختلف کتابوں کے اندر دیکھیں گے، براہین اس بات خدا کو اس طریقے سے آگے تقسیم بندی کرتے ہیں. بہرحال ہمارا ابھی ان عناوین سے سروکار نہیں ہے، ایک عرض کرنا تھا اس میں کتاب کا جو عنوان ہے وہ یہ عرض ہو گئے، اور باقی بزرگان نے جو مختلف عناوین دیے ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، تاکہ مطالعہ کریں تو کوئی مشکل پیش نہ آئے اور مطلب آپ کو نیا نہ لگے. اب اس کے بعد مصنف وارد ہوتے ہیں برہان کے اندر. سب سے پہلا برہان جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ ہے برہان مفہوم محور، کہ جس کو برہان وجودی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. مفہوم محور اس کو برہان وجودی بھی کہتے ہیں. اس کا مدکر کون ہے؟ سب سے پہلے غرب کے اندر آنسلم ہے، کہ جو 1032 میں پیدا ہوا اور 1106 میں فوت ہوا. یعنی آج 2015 ہے، یہ 1036 میں 32 میں پیدا ہوا اور 1106 میں فوت ہوا. یعنی آج سے کتنے سال پرانا؟ کتنا؟
200 سال.
یہ تقریباً بنے گا
1200 سال.
زیادہ بنتا ہے 900 سال سے. تقریباً بنے گا یہ 2015 چل رہا ہے نا، تو 2015 اس میں تقسیم کریں، منفی کریں، کیسے بنتا ہے؟ حدوداً آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال حدوداً 1000 سال پہلے کا ہے یہ. اور اگر آپ ہجری میں جانا چاہتے ہیں تو آج چل رہا ہے 1436، اور یہ پھر کون سے سال سن میں ہوگا؟ 300-400 کے اندر یہ زندگی گزار رہا تھا. یعنی ہمارے خواجہ اپنا شیخ طوسی و شیخ مفید و تقریباً ان کے ہم اثر تقریباً بنے گا. یعنی قدیم ہے یہ برہانے، یہ آنسلم جو ہے. اس کا برہان مفہوم محور کا غرب کے اندر جو مبتکر ہے وہ کون ہے؟ آنسلم ہے. یہ ایک دینی خانوادے کے اندر پیدا ہوا، اور اس کے بارے میں یہ ملتا بھی ہے کہ ये इसने कहा कि मैं खुदा से दुआ करता था कि खुदा एक ऐसा बुरहान मेरे मुझे अता कर के जिसके जरिए मैं सादे से सादा तरीन इंसान को भी खुदा तक ले जा सकूं, खुदा उसके लिए साबित कर सकूं। कहते मेरी उस दुआ का नतीजा है कि खुदा ने मुझे ये बुरहान अता किया और इसी के नाम से ये बुरहान सब्त हो गया, बुरहाने आंसेल, यानी बुरहाने जो मफहूम महवर है जिसको बुरहाने वजूदी भी कहते हैं, इसको बुरहाने आंसेल भी कहते हैं क्योंकि आंसेल मुबतकिर है इसका। और तकरीबन जितनी भी किताबें इस वक्त लिखी जा रही हैं इस बात है वजूद खुदा के ऊपर, उसमें ये बुरहान बहुत अहमियत का हामिल है और सबसे पहले या अहमियत के साथ इस डिस्कस होता है, खुसूसन गर्ब के अंदर तो अभी तक इसके बारे में मुखालिफ व मुआफिक मौजूद हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में बातें मौजूद हैं वहाँ पर, और हमारे यहाँ शर्क के अंदर भी मौजूद। मतलब आप किताब अगर जवादी आमली की तबीयन इस बात बराहीन खुदा उसको उठा के देखें, बुरहान आंसिल अच्छे तरीके से तकरीर भी हुआ है उसमें, इसी तरह का जवाब दिया मिलेगी। और जितनी किताबें इस वक्त लिखी जा रही हैं तबीयन ने बराही ने इस बात खुदा अगर जवाब दिया मिलेगी, अच्छी किताब है, अगर कभी जेब इजाजत दे तो लेके मुताला करें हतमन, यानी किताब बहुत अच्छी है।
उसका नजरिया क्या है?
ये था इसका यानी तारीखचा के इसका मुफ्तखिर जो है फलसफा गर्ब के अंदर ये आंसेल में है। बुरहान मफहूम महवर के अंदर क्या होता है, इसके अंदर वो आकर यूं बात को शुरू करते हैं, कहते हैं देखें हमने खुदा को साबित करना है, खुदा के मुख्तलिफ औसाफ हैं, मसलन खुदा वाजिबुल वजूद भी है, खुदा गैर मालूल भी है, मफहूम इसके ऊपर सिद्ध करता है, यानी मफहूम गैर मालूल, मफहूम वाजिबुल वजूद, मौजूद नामुतनाही भी इस पर सिद्ध करता है, कामिल मुतलक, कादिर मुतलक, हय मुतलक, इस तरीके के औसाफ जो है इसके ऊपर सिद्ध करते हैं। आंसिल्म कहता है कि मैं इन औसाफ में से एक वस्फ लेकर तहलील करता हूं इसके मफहूम को, और साबित इसके मफहूम ही की तहलील के जरिए मैं आपको उसका वजूद साबित करके देता हूं। तो कहते हैं इनमें से बेहतरीन वस्फ जो है वो कामिल मुतलक है, यानी खुदा कामिल मुतलक है, तमाम कमालात रखता है, कोई ऐसा कमाल नहीं है कि जो इस कायनात में लेकिन खुदा के अंदर मौजूद ना हो, बस कामिल मुतलक है, जब तमाम कमालात का मालिक है बस कामिल मुतलक है। वो कहता है मैं इस कामिल मुतलक को लेकर चलता हूं, दुरुस्त है हमने ले लिया, हम ये कहते हैं कि अब कामिल मुतलक को तारीफ करें आप, क्या है कामिल मुतलक, उस हस्ती का नाम है या उस चीज का नाम है कि जो तमाम कमालात रखती हो, कोई भी कमाल उससे खाली ना हो, ये कामिल मुतलक है। दिक्कत करना है इस बुरहान के अंदर, थोड़ा आपको नया दकीक लगेगा क्योंकि नया है, पहले मतलब आपने शायद नहीं पढ़ा ये। बस पहला मुकदमा ये लेता है कि कामिल मुतलक उस चीज को कहते हैं कि जो क्या है तमाम कमालात रखता है, इसी को कामिल मुतलक कहते हैं, बस मफहूम की तारीफ ये उसने कर दी। अगला मतलब जो आंसिल बयान करता है वो ये कि अगर एक चीज जहन में मौजूद हो लेकिन खारिज में मौजूद ना हो, क्या आप उसको कामिल मुतलक कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? इस वजह से कि खारिज में होना भी एक कमाल है, जहन में वजूद रखना भी एक कमाल है। अगर आप ये कहते हो कि कामिल मुतलक फकत जहन के अंदर है खारिज में नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? बस कामिल मुतलक नहीं है। پس نتیجہ یہ کیا لیتا ہے؟ نتیجہ یہ لیتا ہے کہ کامل مطلق جس طریقے سے ذہن میں موجود ہے اسی طریقے سے اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ خارج میں ہونا چاہیے. اگر کامل مطلق خارج میں وجود نہ رکھتا ہو تو تناقض لازم آئے گا. کیسے؟ آپ نے فرض کیا تھا میں نے کامل مطلق کو تصور کیا ہوا ہے. جب آپ نے کامل مطلق کو تصور کیا ہوا ہے اور دوسری طرف سے آپ قائل ہو کہ یہ جو میں نے کامل مطلق تصور کیا ہوا ہے یہ خارج میں نہیں ہے یا خارج میں نہیں ہو سکتا, اس کا مطلب کہ کامل مطلق نہیں ہے. پس جس کو تم نے کامل مطلق فرض کیا ہوا تھا وہ کامل مطلق نہیں ہے, بس تناقض لازم آتا ہے. پس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بدیہی ہے. میں نے مفہوم کو لیا کامل مطلق, اس مفہوم کی تحلیل کی, اس کی تعریف کی, کامل مطلق وہ اگر جو تمام کمالات کا مالک ہو, اور پھر میں نے یہ کہا کہ آپ نے اس نے کیا قضیہ بنایا, وہ قضیہ بنانا بھول گیا. مثلا آپ کہتا ہے کہ اپنے ذہن میں آپ مفہوم کامل مطلق کو لے کر آئے, یعنی آپ یہ کہ میں ایسے کامل مطلق کو فرض کرتا ہوں کہ جس سے اوپر کوئی کامل مطلق نہیں ہے. وہ یہاں سے اپنا برہان شروع کرتا ہے, ہے ذہن کے اندر, ہے مفہوم کے اندر, یعنی میں نے کمال مطلق کے مفہوم کو ذہن میں لیا ہوا ہے کہ ایسے کامل مطلق کا مفہوم میرے ذہن میں ہے کہ جس سے اوپر کوئی کامل مطلق نہیں ہے. پس اگر وہ کہتا ہے کہ یہ کامل مطلق کس کو کہتے ہیں, اس کے مفہوم کے اندر کیا چیز پوشیدہ ہے, کہ ہر چیز اس کی اپنی ہو, ہر کمال رکھتا ہو. پس ذہن میں وجود رکھنا بھی کمال ہے, خارج میں وجود رکھنا بھی کیا ہے؟ کمال ہے. تو اگر آپ اس کامل مطلق کے جس کو تم نے فرض کیا ہے یہ ذہن میں تو وجود رکھتا ہو لیکن خارج میں وجود نہ رکھتا ہو تو تناقض لازم آئے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ممکن ہے کہ آپ, کیونکہ آپ خلاف فرض لازم آتا ہے. کیا آپ نے کہا تھا کہ میں نے ایسے کامل مطلق کو فرض کیا ہے کہ جس کے اوپر کوئی کامل مطلق نہیں ہے, لیکن آپ کہتے ہو یہ خارج میں نہیں ہے, پس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کامل مطلق ہے کہ جو خارج میں وجود رکھتا ہے, جو خارج میں وجود رکھے وہ اس سے اوپر کامل مطلق ہوگا. پس جس کو تم نے کامل مطلق فرض کیا ہوا وہ کامل مطلق نہیں ہے. پس خدا کامل مطلق ہے, میں نے اس کے مفہوم سے خدا کو کیا کر دیا, ثابت کر دیا, وہ خارج میں, یعنی ذہن سے شروع کیا, خارج میں لے کر آ گیا. اس کو ہر انسان تصور, وہ کہتا سادہ ترین برہان ہے, ہر انسان اس کو تصور کر سکتا ہے. فقط اس کو یہ کہیں کہ کامل مطلق کو تصور کرو. وہ کہتا ہے میں نے کر لیا کامل مطلق تصور. ٹھیک ہے, کامل مطلق کیا ہے؟ جو تمام کمالات کا مالک ہے. اچھا اگلا مرحلہ کیا آ جائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس کامل مطلق کو تم نے فرض کیا حالانکہ وہ کامل مطلق ہے, وہ جس طریقے سے ذہن میں موجود ہے خارج میں موجود ہے, اگر وہ کہے کہ نہیں ہے تو پھر کامل مطلق نہیں ہے وہ, کیونکہ جو خارج میں موجود ہوگا اور ذہن میں موجود ہوگا وہ کامل مطلق ہوگا, نہ یہ کہ جو فقط ذہن کے اندر خارج کیا ہے وجود رکھتا ہے وہ کامل مطلق ہوگا. بس وہ کیا ہے, کامل مطلق کو تصور کرتے ہی خدا کے وجود کی تصدیق کر دے گا. اتنا سادہ برہان ہے یہ, وہ آنسلم کہتا ہے. نہ وہ بدعت والی بات ایک دفعہ ذہن سے نکال دیں, اس میں وہ بدیہی ہے, تنبیہ میں لے کر چلے جائیں گے نا. جیسے عرض کیا تھا کہ جو بدیہی ہونا مانتے ہیں وہ براہیم کو پھر تنبیہ کے اندر لے کے جاتے ہیں. وہ ایک تذکر آپ کو دیا تھا, کتاب کے اندر آیا تھا, بیان کرتے. ابھی برہان کے اوپر تمرکز کریں. برہان یہ اصل برہان تھا کہ جو اس نے یہاں پر بیان کیا ہے, یعنی اس برہان کا کیا یعنی حقیقت ہے کہ وہ برہان وجودی وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مفہوم کامل مطلق کو تصور کر لیں تو یہ تصور کر لینا ہی اس کے وجود کو ثابت کر دیتا ہے, مستلزم وجود خارجی ہے. یعنی کامل مطلق کو تصور کرنا یہ مستلزم ہے وجود خارجی کا, اس کامل مطلق کو جس کو آپ نے ذہن میں فرض کیا ہوا ہے. بات واضح ہوئی ہے؟ چونکہ نیا برہان ہے, اگر کوئی نقص ہے ذہن کے اندر تو بیان کریں تاکہ اس کے بعد اگلی باتوں میں وارد ہوں. یعنی क्लियर हो गया मतलब? ये तकरीबन आप यूं समझें कि मैंने सादा तरीन जितना कर सकता था इसको आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया है। मतलब मैं आप किताब के अंदर भी तस्वीर कर देता हूं ताकि मतलब आसान रहे। मतलब यहां पे इन्होंने यूं मुकदमा तकरीर किया है, बी तरदीद मुनकराने वजूद खुदा मी तवानंद दर ज़हन खुद इन मफहूम रा तसव्वुर कुनंद। कहते हैं बेशक जो भी मुनकर खुदा है, सरोकार नहीं हमारा, मुनकर खुदाई को हम कहते हैं, तुम ये मफहूम जो है तसव्वुर कर सकते हो, कर सकते हो। कौन सा? मौजूदी के बुजुर्ग तर आज आन काबिल तसव्वुर नीस, यानी ऐसे मौजूद का तसव्वुर करो कि जिससे बुजुर्ग तर कोई और ना हो, यानी ऐसे कामिल मुतलक का तुम तसव्वुर करो कि उससे कामिल कोई और ना हो। ये कर सकते हो, हर बंदा कर सकता है, चाहे वो मुनकर खुदा है चाहे वो मुस्बत खुदा है। वो कहता है तुम ये तसव्वुर कहते करो इसको तसव्वुर। बस बा इन हाल इद्दआए मुनकराने आन इद्दआए मुनकरान आन असके आंचे दर जहन तसव्वुर कर दे आंद दर खारिज अ जहन वजूद ना दारत। अब जब उसने कहा कि तुमने तसव्वुर कर लिया तो अब तुम्हारा इद्दआ क्या है? तुम्हारा इद्दा यह है, मुनकरान को कहता है, तुम्हारा इद्दा यह है कि जिस बुजुर्ग तर को हमने फर्ज किया है ये जहन में तो है लेकिन खारिज में नहीं है, क्योंकि मुनकर खुदा यही कहता है बुजुर्ग तर जो है वो जिसको हम कायल हैं वो खारिज में वजूद नहीं रखता। बस नतीजा क्या निकलेगा, यानी अगला मुकदमा बनाता है, यकीनन आंचे हम दर जहन व हम दर खारिज अ जहन मौजूद बाशद कामिल तर अज वजूदिया के तनहा दर जहन मौजूद अस। तो मुनकरान को हम यही कहेंगे कि अगर फकत जहन में वजूद रखता तो वो कामिल तरीन नहीं शुमार होगा। कामिल तरीन तब आप उसको कहेंगे कि जब वो तमाम कमालात रखता होगा। तमाम कमालात रखने का मकसद ये है कि वो जहन में भी वजूद रखता हो और खारिज में भी वजूद रखता हो। बिनाबर इन आंचे मुनकर वजूद खुदा तसव्वुर कर दे हा हम कामिल तरीन मौजूद काबिल तसव्वुर अस्त। हाँ, वजूद खुदा तसव्वुर कर दे हम कामिल तरीन मौजूद काबिल तसव्वुर अस्त व हम निस्त, यानी हर दो हो जाएगा। क्यों? इस वजह से कि तुमने फर्ज ये किया हुआ था कि मैंने ऐसे कामिल तरीन को फर्ज किया है कि जिससे कामिल तर और कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से तुम कह रहे हो कि ये क्या है खारिज में वजूद नहीं रखता। पर इसका मतलब है कि कामिल तर उससे कामिल तर जो है एक वजूद मौजूद है जो कि खारिज में वजूद रखता हो। बस तनाकुज़ आ गया तुम्हारे अंदर। तुम एक तरफ से कह रहे हो मैंने ऐसे मफहूम का तसव्वुर किया हुआ है कि जिससे बुजुर्गतर कोई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से कहते हो ये खारिज में नहीं है, पर इसका मतलब इससे बुजुर्गतर है जो कि खारिज में होगा। बस तनाकुज़ गोई आ गई तुम्हारे अंदर। एक तरफ से कहते हो मैंने इसको फर्ज किया हुआ है, दूसरी तरफ से तुम कहते हो खारिज में नहीं है। हाँ, बस वो बुजुर्गतर नहीं है, बस बुजुर्गतर है भी और बुजुर्गतर नहीं भी, ये तनाकुज है और तनाकुज मुहाल है। बस तुम्हें हतमन जिस कामिल तरीन को तुमने फर्ज किया है उसको तुम खारिज में भी मानोगे, वाला वो कामिल तरीन शुमार नहीं होगा। ये असले बुरहान था कि जो अनसिल्म ने बयान किया है। इसके बाद फिर बात आ जाती है इसके ऊपर नकद की। खुद अनसिल्म के जो मुआसिर एक गोनी लू, ये उसका मुआसिर था, उसने भी इसको रद्द किया है। फिर हमारे बुजुर्गान ने भी इसको रद्द किया है और गर्बी जो मुआसिर है उन्होंने भी इसको रद्द किया है और बाद इसके कायल भी हैं। खुद हमारे इस मुआसिर उलमा भी शामिल नहीं हैं, लेकिन जितना किताब के हद में है उतना ही बयान होगा, ज़्यादा नहीं। बाकी तफसीलात इंशाल्लाह बड़ी किताबों में। तो इंशाल्लाह कल से फिर देखेंगे कि इसके ऊपर अब नकद क्या है, यानी बुरहाने आन फिल्म के अंदर क्या नक्स पाया जाता है कि इसको हम कबूल नहीं कर सकते। असली बुरहान यही था। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।